या आप बता रहे हैं कि जितने अक्षर और मात्रा है उतनी ही बोलनी चाहिए, इसके आगे पीछे नहीं बोलनी चाहिए। पर ये जो नमो लोए है
बराबर
वो पहले मीन्स चारों ऊपर के चारों पद में भी बोल सकते हैं, तो अगर ये बोलते हैं तो मीन्स नमो का मंत्र गलत हो जाता है या फिर वो सही है फिर?
हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। एक्चुअल में वो मंत्र नहीं रहेगा, ऐसे प्रयोग किए जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन सिर्फ भाव भाषण के लिए, अर्थ समझने के लिए, उनका स्मरण करने के लिए। मंत्र की जहाँ बात होगी वहां तो वो ठीक नहीं है, मंत्र की दृष्टि से वो ठीक नहीं। वो बात आप यही कहना चाह रहे हैं ना, अंत
हाँ
दीपक जो प्रयोग किया गया है उसको सबके साथ में प्रयोग करना, नमो लोए
हाँ
सव अरहंताणम, नमो लोए सव सिद्धाणम, नमो लोए सव आयरियाणम, नमो लोए सव वज्जायाणम, नमो लोए सव साहुणम, ऐसा। तो ये मंत्र की दृष्टि से ठीक नहीं है। मंत्र की दृष्टि से तो जैसा वो कहा गया है ना, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोए सव साहुणम, इतना ही उपयुक्त है बस। इसमें ओम शब्द का उच्चारण भी नहीं होगा, नमो नमो भी नहीं होगा, किसी तरह की और अक्षर मात्राएं कोई कम ज्यादा नहीं होगी, शुद्धता का ध्यान रखें। सामंत
या
भद्राचार्य देव
भाव
ने कुछ
रख
ऐसे प्रयोग किए हैं
पर आप
जिसमें
भाव
उन्होंने कहा है, नहि हि मंत्रोक्षर न्यूनो निहन्ति विश्वेदनाम, कि मंत्र में यदि कोई भी अक्षर कम और ज्यादा हो गया है तो विष की वेदना को दूर करने में समर्थ नहीं है। तो बहुत सावधानी रखें आप संदर्भ। हाँ बोलिए।
पंडित जी, पर हम नमो का मंत्र इसलिए बोलते हैं कि मीन्स उसका भाव हम लोग ध्यान में रखते हैं या पंच परमेश्वर का स्वरूप ध्यान में रखने के लिए बोलते हैं। आई मीन उसके और कोई
हाँ
प्रयोजन नहीं है नमोकार मंत्र बोलने का, लाइक दूसरे मंत्र का आपने बताया गरुड़ मंत्र जिसका प्रयोजन हो सकता है कि सर्प का विष दूर करना है, पर यहाँ पे नमोकार मंत्र का
हाँ
और कोई संसारिक प्रयोजन नहीं है,
हाँ
तो फिर
हाँ
बोल मीन्स भाव से ही हम लोग बोल रहे हैं या भगवान के दर्शन करने के समय बोलते हैं, तो फिर बोल सकते हैं कि
फिर
फिर
भी
तो
देखिए,
भी गलत है।
मंत्र तो मंत्र मंत्रोच्चारण का भी तो एक अपना महत्व है ना, हमें कुछ नहीं चाहिए उसके माध्यम से, लेकिन मंत्र को क्यों बदलें हम? हम तो ये कहना चाह रहे हैं कि बस जो जैसा मंत्र है हम उसे उसी रूप में रहने दे रहे। क्या उस रूप में बोलते हुए हम उसका भाव वासन नहीं कर सकते? उस रूप में बोलते हुए भी हम उसका भाव विचार कर सकते हैं, उस समय हम उसके भाव के बारे में सही रूप में, नमो अरिहंताणम जिस समय हम बोलते हैं उस समय भी हम विचार कर सकते हैं, अरिहंतों का नमस्कार हो, अरहंत परमेश कैसे होते हैं, अरहंतों का क्या स्वरूप होता है, अरहंत भगवान वितरागी हैं, अरहंत भगवान किसी को कुछ देते लेते नहीं है, किसी को सुखी नहीं करते, किसी को दुखी भी नहीं करते, भक्तों का भला नहीं करते, दुष्टों का संहार नहीं करते, ऐसा ही है अरियंतों का स्वरूप। तो ऐसा हो सकता है, हम चिंतन कर सकते हैं इस तरह का अरियंतों के बारे में, अनंत चतुष्टय से संपन्न होते हैं, चार घातीय कर्मों का प्रभाव हो गया है, समव शरण आदि विभूति से युक्त होते हैं, ये अरियंतों के संदर्भ में किया गया चिंतन। फिर ऐसे नमो सिद्धाणम बोले हम तो सिद्धों का स्वरूप हमारे ख्याल में आना चाहिए, सिद्ध परमेष्टि कैसे होते हैं, अशरीरी होते हैं, वास्तव में तीन तरह के कर्म हैं दुनिया में, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म। सुने हैं आप लोगों ने कभी? फिर
हाँ
एक भाई से पूछता हूँ,
हाँ
क्यों
सुना
भैया सुने हैं कभी?
है।
हाँ, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म, तीन तरह के कर्म हैं। द्रव्य कर्म कौन से होते हैं? ध्यानावरणी आदि आठ कर्मों को द्रव्य कर्म कहते हैं। भाव कर्म राग द्वेष मोह को कहते हैं, और नौ कर्म बाहरी संयोगों को कहते हैं। तो द्रव्य कर्म जो है उनमें दो विभाजन हैं, दो तरह के हैं द्रव्य कर्म, एक घातिया और एक अघातिया। आठ कर्म है ना, उन आठ कर्मों में से ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनी, अंतराय, ये चार कर्म जीव के गुणों का घात करने वाले हैं, अनुजीवी गुणों का घात करने वाले हैं, स्वभाव का घात करने वाले हैं। इनके उपस्थिति से ये जीव दुखी होता है। और चार अघातीय कर्म, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय, ये चार कर्म सिर्फ संयोग रूप से फल देते हैं। अरंतों के चार घातीय कर्मों का अभाव हो गया है, इसलिए अरंत ज्ञान सुख वीर्य प्रकट हो गए हैं। ज्ञान दर्शन सुख वीर्य उनके प्रकट हो गए हैं, अनंतता को प्राप्त हो गए हैं। अब जिनके आठों कर्मों का अभाव हो गया है, अशरीरी हैं, वे सिद्ध परमात्मा है। संसार दशा में दुखों को भोगने का माध्यम है शरीर। आप सोचिए, शरीर नहीं होगा तो ये जीव दुखी नहीं हो सकता। शरीर नहीं हो तो इसको कोई कष्ट कैसे दे दे? शरीर नहीं हो तो सर्दी नहीं लगेगी, शरीर ही नहीं हो तो गर्मी किसको लगेगी? शरीर यदि नहीं होगा तो भूख प्यास कैसे लगेगी? शरीर यदि नहीं होगा तो घुटनों में दर्द, कमर में दर्द कैसे हो सकता है? शरीर ही नहीं हो तो क्या हार्ट अटैक की प्रॉब्लम होगी, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होगी, डायबिटीज की प्रॉब्लम नहीं हो सकती है? माने सारी की सारी प्रॉब्लम यदि कहीं हमारे दिलो दिमाग में दिखाई देती है तो उन सब के पीछे यदि कोई आधार है तो वो है शरीर। आप अपनी सारी प्रॉब्लम्स, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं शरीर संबंधी, उनको एक बार विचार करके देखिए कि शरीर नहीं हो तो वो प्रॉब्लम रहेगी क्या? लगता है नहीं रहेगी। कितनी क्लियर बात हो गई। अरे जो प्रॉब्लम शरीर की मौजूदगी में होती थी, उस शरीर का ही अभाव हो गया तो उन प्रॉब्लम्स का भी अभाव हो जाएगा। वो अवस्था है, जिस अवस्था में शरीर नहीं है वो अवस्था है सिद्ध अवस्था, परमात्मा अवस्था, मोक्ष जिसे कहते हैं, मुक्ति, परम मुक्ति रूप अवस्था है वो। माने उस परम मुक्ति में सिद्ध परमात्मा अशरीरी होते हैं, शरीर से रहित होते हैं, उन सिद्धों के शरीर नहीं होता। सिद्ध परमेष्ठी है, पांच परमेष्ठियों में दूसरे परमेष्ठी का नाम क्या है?
सिद्ध परमेष्ठी।
सिद्ध परमेष्ठी, पहले अरिहंत परमेष्ठी, दूसरे सिद्ध परमेष्ठी, तीसरे आचार्य परमेष्ठी, चौथे उपाध्याय परमेष्ठी और पांचवे साधु परमेष्ठी। इनमें अरहंत परमेष्ठी समावशरण सहित होते हैं। आप जानते हैं अरहंत भी बहुत प्रकार के होते हैं, कभी सुना आप? सात प्रकार के अरहंतों की चर्चा आती है शास्त्रों में। अरिहंतों के सात प्रकार होते हैं। एक बात में भी स्वाध्याय जब अपन ने शुरू किया, एक सेशन तो अपना हुआ था लास्ट बार 14th को, आज 21 है, दूसरी क्लास है मेरी। मैं सिर्फ इतनी बात पूछना चाह रहा हूँ, अपने स्वाध्याय में जितने लोग हैं वे सब प्रयोजन परक बात सुनना चाहेंगे या नॉलेज परक सुनना चाहेंगे? मैं उस तरह से बात करूँ, देखिए एक तो इन्फॉर्मेशन वाली बात होती है। यदि आप इन्फॉर्मेशन और नॉलेज चाहते हैं तो मैं उस तरह से बात करूं, फिर आपको बहुत सारी बातें बतलाऊं, नई नई बातें, क्या है, कैसे होता है, कितने प्रकार होते हैं, कितने भेद प्रभेद होते हैं, किस किस का क्या स्वरूप होता है। ये तो हो गई इन्फॉर्मेशन वाली बात। और आप यदि ये चाहते हैं कि नहीं नहीं इस इन्फॉर्मेशन का क्या करेंगे हम, हमारे को तो अपना क्या प्रयोजन है वो बताओ, तो फिर उस दृष्टि से बात करें जैसा आप लोग चाहें। अभी कितने लोग होंगे स्वाध्याय में? अभी
अभी 8 लोग हैं।
8 लोग हैं, तो आप लोगों का क्या राय है, कैसा सुनना चाहेंगे?
हमारे लिए कौन सी यूजफुल ज्यादा होगी?
मेरे को तो ऐसा लगता है कि यदि अभी कुछ बेस नहीं है तो अपने को नॉलेज भी होनी चाहिए सब बातों के बारे में। देखिए इंटरेस्टिंग को यदि अपन छोड़ दे रहे हैं एक बार, रोचकता को, यदि आप रोचकता की बात करेंगे तो फिर वो तो प्रयोजन परक बातों में आएगी। और सिर्फ इन्फॉर्मेशन की दृष्टि से देखेंगे, नॉलेज बढ़ाने की दृष्टि से, हमें पता तो हो अनंत भगवान कौन होते हैं, क्या स्वरूप है उनका, कितने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कितने उनके भेद प्रभेद होंगे, एक एक का स्वरूप क्या है, हमें पता होना चाहिए, इसलिए नॉलेज की बात करेंगे। चलिए खैर, सात प्रकार के अरंतों की चर्चा आती है। हाँ जी,
दोनों साथ में चले ऐसा हो सके तो बहुत बढ़िया रहेगा।
चलिए अरंत परमात्मा के सात भेद बताता हूँ। अरंत होते कौन है? कोई भी जीव जो मुनि अवस्था में है, जिसने घर गृहस्थी का त्याग किया है, मैं अरंत बतला रहा हूँ अरंत कौन होते हैं, ठीक है ना? आर्यन कौन होते हैं? जो जिस व्यक्ति ने घर गृहस्थी का त्याग किया है, मुनि बन गया है, महाराज हो गया है, साधु संन्यासी तपस्वी हो गया है, उसके बाद जो अपने आत्मा में लीन हो गया, अपने आत्मा में लीन हो गया साधु बनने के बाद में, फिर क्या करता है वो? आत्मा में लीन जब होते हैं तो अंदर में चार कर्मों का अभाव हो जाता है, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनी, अंतराय। और इन चार कर्मों के अभाव होने पर अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य प्रकट होते हैं। बस उस अवस्था का नाम है अरहंत अवस्था। अनंत दर्शन ज्ञान वीर्य जिस अवस्था में प्रकट हो गए, चार घातिया कर्मों का जिसमें अभाव हो गया, उस अवस्था को हम कहेंगे अरिहंत अवस्था। ऐसी अरहंत अवस्था प्रकट हो जाने पर जो एक सर्वोत्कृष्ट अवस्था होती है वो कहलाती है तीर्थंकर अवस्था। सात प्रकार के अरिहंत होते हैं, उनमें तीन प्रकार के अरिहंत तो होते हैं तीर्थंकर अरिहंत, और चार प्रकार के होते हैं दूसरे प्रकार के अरिहंत। इंटरनल कोई फर्क नहीं है, अरिहंत अरिहंत सब समान है। आंतरिक दृष्टि से चार कर्मों का अभाव हुआ है, आनंद चतुष्टय प्रकट हुए हैं, परम औदारिक शरीर हो गया है, इस दृष्टि से सभी अरिहंत एक समान हैं, कोई फर्क नहीं है। अंतर कहाँ है और किस अपेक्षा से अंतर किए गए हैं? तो देखिए, तीन प्रकार के तो अरिहंत होते हैं, एक पंच कल्याणक वाले अरिहंत, एक तीन कल्याणक वाले अरिहंत और एक दो कल्याणक वाले अरिहंत। कल्याणक जानते हैं आप क्या होते हैं? गर्भ कल्याण, पंच कल्याणक सुने हैं ना आपने?
हाँ।
गर्भ कल्याणक, गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान और मोक्ष, जिसे निर्वाण भी कहते हैं, निर्वाण भी कहते हैं उसको। तो ये पांच प्रकार के कल्याणक हैं। गर्भ कल्याणक, कल्याणक शब्द की क्या व्याख्या है? ऐसी व्याख्या मिलती है तीर्थंकरों के निमित्त से, तीर्थंकरों की मौजूदगी में, तीर्थंकरों के होने पर देवों के द्वारा जो उत्सव मनाए जाते हैं, तीर्थंकरों की जीवन में घटी हुई पांच घटनाओं के आधार पर जो उत्सव देवों ने मनाया है उसे हम कहते हैं कल्याणक। पांच मुख्य घटनाएं घटी है तीर्थंकरों के जीवन में घटती है। सबसे पहली घटना गर्भ में आना, गर्भ कल्याणक। जन्मोत्सव, जन्म कल्याणक एक अद्भुत घटना है जिसमें बाल तीर्थंकर को सुमेरु पर्वत के शिखर पर ले जाया जाता है, पांडुक शिला पर ले जाकर उसका 1008 कलशों से अभिषेक किया जाता है, वो कौन सा कल्याणक कहलाता है? जन्म कल्याणक। उसके पश्चात तीसरी महत्वपूर्ण घटना उनके जीवन में घटती है जिस घटना का नाम है दीक्षा, तप, घर गृहस्थी का त्याग, परिवार राजपाट का त्याग, संन्यास अवस्था। उस अवस्था को कहेंगे हम दीक्षा कल्याणक या फिर तप कल्याणक। ठीक है, एक गर्भ कल्याणक हो गया, एक जन्म कल्याणक हो गया, एक तप कल्याणक हो गया। उसके पश्चात एक महत्वपूर्ण घटना और उनके जीवन में घटती है जिस घटना का नाम है केवल ज्ञान, ज्ञान की पूर्णता हो गई, केवल ज्ञान हो गया, वो केवल ज्ञान कल्याणक हो गया, ज्ञान कल्याणक हो गया चौथा। और पांचवा है निर्वाण कल्याणक, मोक्ष कल्याणक, ये पांच कल्याणक है। ठीक है, अब इनमें अपन बात कर रहे थे अरिहंतों की, जिनके ये पांचों कल्याणक होते हैं वे तो अरिहंत होते ही हैं। कुछ ऐसे भी तीर्थंकर होते हैं जो बिना पंच कल्याणक के ही तीर्थंकर हो जाते हैं, जिनके पांचों कल्याणक नहीं होते। पांचों कल्याणक सभी तीर्थंकरों के होना जरूरी नहीं है, कुछ तीर्थंकर ऐसे हैं जिनके दो कल्याणक भी हुए हैं, बहुत से तीर्थंकर ऐसे हैं जिनके तीन कल्याणक भी हुए हैं। क्या तो मतलब पंच कल्याणक वाले तीर्थंकर हो गए, दो कल्याणक वाले तीर्थंकर हो गए और तीन कल्याणक वाले तीर्थंकर हो गए। ठीक है, पंच कल्याणक, दो कल्याणक और तीन कल्याणक किसके कौन से होते हैं? देखिए, हमारे जो 24 तीर्थंकर है ना, नाम हम जानते हैं, आदिनाथ भगवान या ऋषभ देव भगवान से लेकर और महावीर भगवान तक जो ये 24 तीर्थंकर हैं, ऋषभ देव से महावीर भगवान तक जो ये तीर्थंकर हैं, इन 24 तीर्थंकरों के तो सभी के पंचकल्याणक हुए हैं। ये सबके सब तीर्थंकर कौन होते हैं? पंचकल्याणक वाले तीर्थंकर होते हैं ये सब। तो दो और तीन कल्याणक वाले तीर्थंकर कौन होते हैं, कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं? देखिए, जिस धरती पर हम रहते हैं, हाँ, जिस धरती पर हम रहते हैं, जिस क्षेत्र में हम निवास करते हैं, इस क्षेत्र का नाम है भारत क्षेत्र। भारत का नाम नहीं है, पूरे भारत क्षेत्र का नाम। भारत क्षेत्र में ही अमेरिका भी है, लंदन भी है, जापान भी है, रूस, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, सब सब देश जितने हैं ना, ये सारे के सारे देश, सबके सब द्वीप जो महाद्वीप कहे जाते हैं, ये सब समुद्र जिन्हें हम समुद्र कहते हैं, ये सब कहाँ है? ये हमारी इसी दुनिया में है। कौन सी दुनिया में? जिस दुनिया के अंदर हम रह रहे हैं। ये सब दुनिया कौन सी है? भारत क्षेत्र की। तो ये भारत क्षेत्र है। और इसी तरह से एक क्षेत्र और है जिस क्षेत्र को विदेह क्षेत्र के नाम से कहा जाता है। वहां तीर्थंकर परमात्मा अभी भी मौजूद हैं, हमेशा रहते हैं तीर्थंकर। कौन से तीर्थंकर रहते हैं वहां हमेशा? कोई ना कोई विद्यमान 20 तीर्थंकरों का सद्भाव हमेशा रहता है। सीमंदर भगवान वर्तमान में भी वहां है। सीमंदर है, युगमंदर है, बाहु है, सुबाहु है, स्वयंप्रभ है, संजातक है, विशाल कीर्ति है, वृषभानंद है, वज्रधर है, ऐसे बहुत सारे तीर्थंकर हैं वहां जो मौजूद हैं। अब हमें ये कहना है कि विदेश क्षेत्र के जो तीर्थंकर होते हैं, वे तीर्थंकर दो कल्याणक वाले भी हो सकते हैं और तीन कल्याणक वाले भी हो सकते हैं। और भारत क्षेत्र वाले जो जितने भी तीर्थंकर होते हैं, वो सब पंच कल्याणक वाले ही तीर्थंकर होते हैं। आप कहेंगे थोड़ा सा बात ख्याल में नहीं बैठ रही, क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि तीर्थंकर जो जीव बनते हैं, वे तीर्थंकर कर्म प्रकृति के उदय से बनते हैं, राइट? हमारे कर्म बंधते हैं, जैसे हमारे विचार होते हैं, जैसा हमारा चिंतन होता है, जैसी हमारी सोच होती है, हमारा थिंकिंग प्रोसेस जैसा होता है, उसके आधार पर हर समय हमारे साथ में कर्म बनते हैं। ये जैन फिलॉसफी की बात कर रहा हूं मैं। जैन दर्शन क्या है, जैन कर्म सिद्धांत क्या है? दुनिया में जितने प्राणी हैं, जितने जीव हैं, जीवनधारी हैं, चाहे वे एक इंद्रिय हो, दो इंद्रिय हो, तीन इंद्रिय हो, विकलत्र हो, और भी कोई हो, हाथी घोड़ा हो, कुत्ता बिल्ली हो, गाय भैंस हो, किसी भी तरह के कोई जीव हो, प्राणी हो, या सभी मनुष्य हो, ये सब सभी जीव, इन सब जीवों के हर समय कोई ना कोई विचार, चिंतन, परिणाम चलते रहते हैं। आपने कभी महसूस किया कि हमारे दिलो दिमाग में कोई विचार ही नहीं है, कुछ भी विचार नहीं चल रहा है? ऐसा कोई क्षण नहीं हो सकता जिस क्षण ये जीव विचार शून्य हो जाए। तो देखिए, अब ये जीव जैसे विचार करता है, जैसा चिंतन चलता है ना इस जीव का, समझ लीजिए आप, वैसे के वैसे ही कर्म बंधते हैं। ये है कर्म बंधने का प्रोसेस। एक जीव के वर्तमान में किसी को मारने के परिणाम हुए, विचार हुए, चिंतन में आए, ये बात, यार इसको काश इसको मार दूंगा, यार बर्दाश्त नहीं हो रही ये बात, इसको कैसे मारा जाए, प्लानिंग कर रहा है वो। तो बोलिए, मैं आपसे पूछता हूँ, जो व्यक्ति ऐसी प्लानिंग कर रहा है, वो कर्म बांध रहा है या नहीं बांध रहा है? बांध रहा है। क्यों बांध रहा है भाई? क्यों बांध रहा है वो कर्म? मारा तो है ही नहीं उसने किसी को, मारा नहीं है। देखिए आप, मारा नहीं है, लेकिन मारने का विचार किया है,
भाव किया है,
भाव किया है। तो मारने के भाव का भी फल मिलेगा, हिंसा का पाप लगेगा उसको। हर समय कोई ना कोई परिणामों से कर्म बनते रहते हैं। तो जो जीव दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, शील व्रतेश मन विचार, अभीक्षण ज्ञानोपयोग, संवेग शक है, ये जो है ना, सोलह कारण भावनाएं, जो जीव इन सोलह कारण भावनाओं को भाता है वो सोलह कारण भावनाओं को भाने वाले जीव के तीर्थंकर प्रकृति का बंधन होता है। माने तीर्थंकर प्रकृति भी कर्म की एक प्रकृति है, नाम कर्म की एक प्रकृति है। जो जीव इस तीर्थंकर कर्म प्रकृति का बंधन करेंगे वे ही जीव फ्यूचर में तीर्थंकर बनेंगे। बिल्कुल स्पष्ट रीति नीति है ये। माने किसी भी व्यक्ति को तीर्थंकर बनने के लिए कर्म बंधन, तीर्थंकर नाम का एक कर्म है, जैसे ज्ञानावरणी कर्म है, दर्शनावरणी कर्म है। ज्ञानावरणी कर्म ज्ञान को ढकने का काम करता है, दर्शनावरणी कर्म दर्शन पे आवरण डालने का काम करता है, मोहनी कर्म इसके चित्त को विभक्त करने का काम करता है, अंतराय कर्म अनेक प्रकार की विघ्न बाधाएं डालने का काम करता है। क्या तो इसी तरह से एक नाम कर्म है, जो नाम कर्म शरीर की संरचना करता है, शरीर संबंधी सारी व्यवस्थाएं जिसके पास में होती हैं, उसका नाम है नाम कर्म। इस नाम कर्म के बहुत सारे भेद हैं, जिनमें एक भेद तीर्थंकर भी है। माने नाम कर्म के उस तीर्थंकर नामक कर्म प्रकृति के उदय से ये जीव तीर्थंकर बनते हैं। इतनी बात ख्याल में आ गई, तीर्थंकर कैसे बनते हैं? माने कर्म के उदय से बनते हैं। मुझे यहाँ सिर्फ इतनी सी बात बतलानी है कि वो कर्म बंधता कब है और कौन बांधता है और कैसे कैसे बंधा जाता है, कब उदय में आता है। कुछ नियम है, संक्षिप्त नियम इसके संदर्भ में, तीर्थंकर प्रकृति के संदर्भ में। नियम नंबर फर्स्ट, तीर्थंकर प्रकृति जब इस जीव को बंधना शुरू होती है तो वो निरंतर बंधती ही रहती है। ये कर्म प्रकृति ध्रुव बंधनी प्रकृति कहलाती है, ध्रुव बंधनी प्रकृति। कोई कर्म प्रकृति ऐसी नहीं है ध्रुव बंधनी हो। हमने विचार परिणाम किया और कर्म बंध गया, बस खत्म, छुट्टी हो गई। फिर नया विचार, नए कर्म, नया विचार, नए कर्म, नया विचार, नए कर्म, नया विचार, नए कर्म, नए भाव, नए कर्म, ये सब सिलसिला चलता रहता है। अब तीर्थंकर प्रकृति एकमात्र ऐसी प्रकृति है कि ये तीर्थंकर प्रकृति ऐसी पुण्य प्रकृति है जो एक बार बंधना शुरू होने के बाद में रुकती नहीं है, बंधती जाती है, बनती जाती है, बनती जाती है। तो किन जीवों के बंधती है? तो का सोलह करण भावना वाले भाने वालों। कब बंधती है और कब उदय में आती है? तो का तीर्थंकर प्रकृति बांधने के बाद में ये जीव दो तीन भाव तक इधर उधर भी जा सकता है। एक आध दो भाव तीर्थंकर प्रकृति के बांधने के बाद में भी इधर उधर के धारण कर सकता है। लेकिन भरत और ऐरावत क्षेत्र में जितने भी तीर्थंकर होंगे वे सभी तीर्थंकर नियम से पंच कल्याणक वाले ही होते हैं। माने उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति पूर्व अवस्था में पूर्व भाव में ही बांधी थी। तीर्थंकर प्रकृति कोई व्यक्ति ऐसे है जो विदेश क्षेत्र में वर्तमान में मौजूद है, कोई उपदेश देने वाला नहीं है, कोई धर्म चर्चा सुनाने वाला नहीं है, ठीक है। उनको ऐसा भाव आता है कि सब जगत के जीवों का कल्याण हो, हित हो, भला हो, ऐसे अभिप्राय से जगत के जीवों के कल्याण की भावना रूपी अभिप्राय से किसी किसी व्यक्ति को गर्भ और जन्म कल्याण के बाद में भी उसी भाव में तीर्थंकर प्रकृति बांधने रूपी कर्म बन सकता है। तो अब कितने कल्याणक बनाए जाएंगे? देखिए, जो व्यक्ति तीर्थंकर प्रकृति को पिछले जन्म से बांध करके लाया है उसके तो होंगे पंच कल्याणक। पिछले भाव से तीर्थंकर प्रकृति को बांध के आया है तो वर्तमान में जब वो गर्भ में आएगा तो गर्भ कल्याणक बनाएंगे देवलोक, जन्म जन्म कल्याणक वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें। अच्छा, अब कोई जीव ऐसा है जिसने पिछले जन्म में तीर्थंकर प्रकृति नहीं बांधी थी, जिसने पिछले जन्म में बांध दी थी उसके तो पांचों कल्याणक मनाए जाएंगे इस जन्म में गर्भ में आने से पहले से ही, ठीक है। अब हम बात करें जिसने पिछले जन्म में तीर्थंकर प्रकृति नहीं बांधी थी तो उसके गर्भ कल्याणक मनाया जाएगा कि नहीं? नहीं, क्योंकि पिछले जन्म में बांधी नहीं थी तो गर्भ में आने के पहले कब बांधेगा, तो नहीं मनाया जाएगा गर्भ। अच्छा उसके जन्म कल्याणक मनाया जाएगा कि नहीं?
नहीं
नहीं मनाया जाएगा। उसके दीक्षा कल्याणक
हो सकता है, नहीं भी हो सकता।
हाँ।
वाले
और ज्ञान कल्याणक?
ज्ञान कल्याणक मनेगा। दो
मोक्ष कल्याणक
मनेगा। हाँ वो तो दो हो।
हाँ मोक्ष कल्याणक
वो भी बनेगा।
बराबर है। मैं सिर्फ यहाँ इतनी बात जानना चाह रहा हूँ कि विदेश क्षेत्र के अंदर तीर्थंकर होते ही रहते हैं जीव। कोई जीव अभी यहाँ से मर करके विदेश क्षेत्र में चला गया, गर्भ में चला गया माता के, कुछ काल रहा 9 महीने करीब, तो वहां से निकल करके आया और फिर समझने लग गए कि अब अपना जो है तीर्थंकर प्रकृति बंध जाएगी और संयोग से बंध भी। तो ऐसे जीवों के कितने कल्याणक बनाए जाएंगे? किसी व्यक्ति ने गर्भ में आने के बाद में जन्म से पहले पहले तो तीर्थंकर प्रकृति बांध नहीं सकता। जन्म होने के बाद में कुछ अभ्यास करने के बाद में बांधेगा ना। तो ऐसे जीवों के दीक्षा लेने पर दीक्षा कल्याणक बनाएंगे देवलोग, ज्ञान हो जाने पर ज्ञान कल्याणक मनाएंगे और मोक्ष हो जाने पर निर्वाण कल्याणक मनाएंगे। ये तीन कल्याणक वाले तीर्थंकर हुए। फिर दो कल्याणक वाले तीर्थंकर कौन कौन से होंगे?
दीक्षा के बाद जिसको ज्ञान होता है।
हाँ दीक्षा के बाद जिसने तीर्थंकर प्रकृति बांधी हो ऐसे व्यक्ति भी मिल सकते हैं जिन्होंने पिछले जन्म में तीर्थंकर प्रकृति नहीं बांधी थी, गर्भ अवस्था में बंधी नहीं, जन्म लेने के बाद में इधर उधर जो भी विचार चिंतन चलते रहे वो चलते रहे, तो जन्म के बाद में यदि तीर्थंकर प्रकृति बांध ले तो तीन कल्याणक, और फिर उसके भी बाद में यदि दीक्षा लेने के बाद में यदि उनको तीर्थंकर प्रकृति का बंधन होता है तो फिर उनके दो ही कल्याणक मनाए जाएंगे। तो तीर्थंकर अरिहंतों की चर्चा कर रहे हैं। तीर्थंकर अरिहंत तीन प्रकार के हो गए, पंच कल्याणक वाले तीर्थंकर अरिहंत, दो कल्याणक वाले तीर्थंकर अरिहंत और तीन कल्याणक वाले तीर्थंकर अरिहंत। पंच कल्याणक वाले, दो कल्याणक वाले और तीन कल्याणक वाले, ये सब कौन है? तीर्थंकर अरिहंत। तीन प्रकार हो गए अरिहंतों के। अब चार प्रकार के हैं वो अलग तरह के हैं। चार कौन कौन से अरिहंत हो सकते हैं? एक चर्चा आती है शास्त्रों में उपसर्ग केवली की, उपसर्ग अरिहंत। बाहर में उनके ऊपर उपसर्ग हो रहा था और उपसर्ग होने के काल में वे अपने स्वभाव में लीन हुए, उपसर्गों की उसने परवाह नहीं की और ऐसी स्थिति में जो उन्हें तप प्रकट हुआ है, जो उनके समझिए आप किसकी बात कर रहे हैं, हम दूसरे अरियंतों की बात कर रहे हैं, हैं उपसर्ग वालों की बात कर रहे हैं, पार्श्वनाथ की बात भी किया। पार्श्वनाथ तो तीर्थंकर ही थे, तीर्थंकर कर्म प्रकृति का उदय था। हाँ उनके पांचों कल्याणक थे ना उनके, तो वे तीर्थंकर अरियंत हो गए, वो तो अलग हो गए। अब दूसरे अरियंत थे उपसर्ग अरियंत, कोई मुनिराज ध्यान अवस्था में बैठे और किसी ने उपसर्ग कर दिया उनके ऊपर, उपसर्ग कर दिया, उपसर्ग से विचलित नहीं हुए, वे कौन से अरियंत कहलाएंगे? उपसर्ग केवली। उपसर्ग केवली इनके पंच कल्याणक नहीं होंगे, इनके दीक्षा ज्ञान कल्याणक आदि भी नहीं होंगे। सामान्य व्यक्ति है, अपने घर गृहस्थी परिवार के साथ में रहते हैं और उनका दीक्षा लेने का परिणाम आया, उन्होंने दीक्षा ले ली, उनके ऊपर उपसर्ग होने लगा, उपसर्ग भी खूब हुआ उनके ऊपर, लेकिन उपसर्ग से विचलित नहीं हुए और उन्होंने केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ली, अनंत बन गए, अनंत परमेश जी। ये उपसर्ग केवली हुए। एक है अंतःकृत केवली।
क्या है पंडित जी?
अंतःकृत,
अंतःकृत केवली।
हाँ उपसर्ग केवली तो ख्याल में आ गया ना।
हाँ जी।
जिन जिनके ऊपर उपसर्ग हुए हो और उपसर्ग के काल में शरीर ही नहीं बचा हो, उपसर्ग दूर की दरकार वाली बात नहीं है, वही व्यक्ति ऐसे हैं जैसे मान लीजिए गज कुमार मुनिराज हैं, उपसर्ग केवली हुए, युधिष्ठिर भीम अर्जुन, तीन पांडव मुनिराज हैं, कौन से भगवान बने हैं? तो हम कहेंगे अरिहंत भगवान। बोले अरिहंत कौन से, तीर्थंकर होते हैं अरिहंत तो? कि नहीं नहीं अलग। तो ये अंतःकृत, एक हो गए उपसर्ग केवली, एक हो गए अंतःकृत केवली। उपसर्ग केवली जो उपसर्ग से विचलित नहीं हुए हैं, वे उपसर्ग केवली हैं। अंतःकृत केवली जो दीक्षा लेने के बाद में अंतर्मुहूर्त में ही अपने स्वभाव में लीन हुए और उन्हें केवल ज्ञान निर्वाण की प्राप्ति हो गई, ये दूसरा प्रकार हो गया। कुल कितने प्रकार हो गए अरिहंतों के?
पांच।
कौन कौन से?
पंच कल्याणक, तीन कल्याणक, दो कल्याणक, उपसर्ग केवली और अंतर्कृत
केवली। बहुत सुंदर। तो इस तरह से ये पांच वेद हो गए। दो और हैं, एक है मूक केवली और एक है सातिशय केवली। मूक, मूक मतलब मौन रहना,
हाँ,
कुछ नहीं बोलना, जिनकी दिव्य ध्वनि नहीं खिड़ती, इनको सामान्य केवली भी कहते हैं। सामान्य केवली है ये, इनका उपदेश नहीं होता, मौन ही रहते हैं। केवल क्या तो हो गया, अरंत दशा की प्राप्ति तो हो गई, जगत के जीवों का उद्धार नहीं हो रहा इनसे, अंतःकृत है। और अंतिम सातवां भेद है इसके साथ साथ में, वो है सातिशय केवली।
सातिशय केवली,
सातिशय केवली ये कौन होते हैं? कहीं कहीं आपने हो सकता है गुरुदेव के व्याख्यानों में कभी कोई सुनी हो बात। सातिशय केवली कौन होते हैं? वे केवली जिनकी जिनके समोपचरण की रचना तो नहीं होती, लेकिन जिनकी गंध कुटी लगती है। गंध कुटी लगती है, ये गंध कुटी क्या चीज है? गंध कुटी एक समोपचरण का मिनी रूप है, छोटा रूप है। वहां बैठ करके इन अरंतों का उपदेश भी होता है। तीर्थंकर नहीं होते ये, सातिशय केवली है। तो सात प्रकार हो गए ये, एक पंच कल्याणक वाले तीर्थंकर अरिहंत, दूसरे तीन कल्याणक वाले तीर्थंकर अरिहंत, तीसरे दो कल्याणक वाले तीर्थंकर अरिहंत, मूक केवली, अंतःकृत केवली, अंतःकृत कौन है?
अंतर्मुहूर्त में,
अंतर्मुहूर्त में, हाँ अंतर्मुहूर्त में जिन्हें केवल ज्ञान हो जाए दीक्षा और उपसर्ग के काल में, वे अंतःकृत केवली है। एक उपसर्ग केवली है, उपसर्ग के काल में जिन्हें केवल ज्ञान हो गया वो, वे उपसर्ग केवली है। बाहर में उनके ऊपर पत्थर बरसाए जा रहे हैं, जैसे मान लो पार्श्वनाथ स्वामी के ऊपर बाहर से ओले बरसाए जा रहे हैं, बाहर से धूल माटी उनके ऊपर फेंक रहे हैं, शिलाखंड फेंक रहे हैं, लेकिन फिर भी अपने स्वभाव में लीन है। तो ऐसे अरिहंतों को हम क्या कहेंगे?
उपसर्ग केवली।
नहीं नहीं नहीं, सामान्य केवली है। मूक केवली है यदि वे नहीं बोल रहे हैं तो, नहीं बोल रहे हैं तो मूक केवली है, और बोल रहे हैं और हम हमारे हिसाब से बुलवाना चाहते हैं तो हम कहेंगे वो सातिशय केवली है। बोल रहे हैं वो सातिशय केवली का मतलब छोटा समोचरण। तीर्थंकर एक बहुत विशेष पुण्यशाली हो गए तो उनके लिए ऐसी व्यवस्था होती है कि तीन तीन गतियों के जीव उनकी बात को सुनने के लिए आते हैं, लेकिन हर जीव तो तीर्थंकर नहीं होता है ना। हम दूसरे जीवों की बात करें जो तीर्थंकर नहीं है, अरिहंत तो वे भी हो सकते हैं, अरंत दशा की प्राप्ति तो उनको भी हो ही सकती है और होती है। तो उन अरंतों को हम कहेंगे सातिशय, अतिशय सहित, चमत्कार सहित, रिद्धियों सहित, अनेक प्रकार की विशिष्ट योग्यताओं को साथ में लेकर यदि हम चलते हैं तो हम कहलाएंगे, हम उन्हें कहेंगे सातिशय केवली। मूक हो गए, सातिशय हो गए, अंतःकृत हो गए, उपसर्ग केवली हो गए और पंच कल्याणक वाले, तीन कल्याणक वाले, दो कल्याणक वाले तीर्थंकर हो गए। ये सब के सब अरिहंतों के भेद हैं, सात प्रकार के अरिहंत। सभी अरहंतों की दिव्य ध्वनि नहीं खिड़ती, सभी अरहंतों के समूह शरण नहीं लगता, सभी अरहंतों के शरीर में 1008 चिन्ह नहीं होते, सभी अरहंतों का खून दूध के समान सफेद नहीं होता, सभी अरहंतों के नखों केश नहीं बढ़ते हों, ऐसी बात भी नहीं है।
वो तो पंडित जी
बहुत सारी बातें हैं
पंडित जी, वो 34 अतिशय जो है वो तो सब सबको होते हैं ना, केवली बन जाते हैं फिर कि खाली तीर्थंकर भगवान को ही होते हैं जो जन्म के, ओके
खाली
वो तीर्थंकर भगवान को ये 10
खाली तीर्थंकरों के ही होते हैं।
हाँ,
हाँ, 10 जन्म के, 10 केवल ज्ञान के, 14 अतिशय देवकृत, 8 प्रातिहार्य, 4 अनंत चतुष्टय, ये सब के सब
नॉर्मल केवली भगवान होते हैं, उनके नाक केश भी बढ़ते हैं, वैसा हो सकता
है। हाँ बढ़ते हैं, अरिहंत होने के बाद तो नहीं बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले तो बढ़ते ही हैं।
हाँ उसके पहले बढ़ते हैं, पर वो जो अतिशय जो बताया है तीर्थंकर भगवान के, जो कोई कोई अतिशय है वो केवल ज्ञान के जो अतिशय है वो नॉर्मल केवली को भी हो सकते हैं।
हाँ वो हो सकते हैं, लेकिन उनको अतिशय नाम नहीं कहते। ये जो अतिशय जो 46 मूल गुणों की जो बात कही गई है, ये सबके सब तीर्थंकरों की मुख्यता से चर्चा की गई है। तो सात प्रकार हो गए ये अरिहंतों के। इनमें तीर्थंकर की एक परिभाषा दी है आपके बालवोध पाठमाला भाग एक तीसरे पाठ में, तीर्थंकर और भगवान वाला एक चैप्टर है आप लोगों के पास में बुक्स?
हाँ।
चैप्टर नंबर 3 तीर्थंकर और भगवान। इस चैप्टर में प्रारंभ में मतलब जो राइट साइड वाला जो पेज है वहाँ ऊपर ही ऊपर तो इन्होंने दी है तीर्थंकर की परिभाषा, तीर्थंकर किसे कहते हैं, देख पा रहे हैं आप लोग कोई?
हाँ, गुजराती में है।
गुजराती में है, कोई बात नहीं। बोल के बता सकते हैं क्या लिखा है?
उसमें गुजराती में लिखा है कि जे धर्म तीर्थ नो उपदेश आपे छे, समवसरण आदि वैभव थी युक्त होय छे, अने जेमने तीर्थंकर नाम कर्म नामना महापुण्य नो उदय होय छे तेमने तीर्थंकर कहे छे, अने ते 24 होय छे।
बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। देखिए क्या परिभाषा दी है, जो समवसरण आदि विभूति से युक्त होते हैं। पहली बात, तीर्थंकर वो होंगे जिनके समोचरण की रचना होगी, सामने केवलियों के समोचरण नहीं होता, तीर्थंकरों के समोचरण की रचना होती है। तो सबसे पहली शर्त हमारी क्या है, जो समोचरण आदि विभूति से होते हैं। दूसरी शर्त तीर्थंकर होने के लिए, जिनके तीर्थंकर नाम कर्म नाम का महापुण्य का उदय होता है। बोलो ख्याल में आ रही है बात? तीन बातें कही है यहाँ तीर्थंकर की परिभाषा में, और तीसरी बात के जो धर्म तीर्थ का उपदेश देते हैं। वे ही तीर्थंकर होंगे, इसका मतलब बाकी सब में ये तीन विशेषताएं नहीं होगी। बाकी जितने अरहंत होंगे उनके समोचरण की रचना नहीं होगी, बाकी जो अरहंत हैं वे धर्म तीर्थ का उपदेश नहीं देंगे, बाकी जो अरहंत हैं उनके तीर्थंकर नाम कर्म नाम का महापुण्य का उदय नहीं होगा, तीर्थंकर प्रकृति नामक कर्म उनके नहीं होगा अन्य अरहंतों के। इस तरह से उनमें अंतर भी किए जा सकते हैं, सामान्य अरहंत और तीर्थंकर अरहंत, इन दोनों में हम अंतर भी कर सकते हैं। इन अरहंतों के कुल 46 मूल गुण होते हैं। तो इस तरह से अपन ने थोड़ी बहुत बात अरहंतों के संदर्भ में की है। ठीक इसी तरह से सिद्धों के संदर्भ में यदि हम बात करें तो समस्त कर्म का जिनके अभाव हो गया है वे सिद्ध परमात्मा है, अशरीरी है, शरीर से रहित हो गए हैं, ये चरम अवस्था है इस जीव की, परम उत्कृष्ट अवस्था, इसे सिद्ध अवस्था कहते हैं। आचार्य उपाध्याय और साधु ये जो तीन परमेष्ठी हैं ये तो हमें दिखाई देते हैं, त्यागी तपस्वी सन्यासी वैरागी होते हैं, घर गृहस्थी और आडम्बरों से रहित होते हैं, ये आचार्य उपाध्याय और साधु होते हैं। इन सबके भेद प्रभेद, इन सबके मूल गुणों की चर्चाएं वगैरह भी की है, जैसे अरहंतों के 46 मूल गुण होते हैं, उसी तरह से सिद्धों के कितने मूल गुण होते हैं? आठ है, आठ मूल गुण होते हैं। आचार्यों के 36 मूल गुणों की चर्चा की है शास्त्रों में, आचार्यों के 36 मूल गुण होते हैं। उपाध्याय के 25 मूल गुण होते हैं, 25, और सर्व साधुओं के 28, 28 मूल गुण होते हैं। इस तरह से मूल गुण की चर्चा भी हमारे ख्याल में होनी चाहिए। बात यह है कि ये जो पंच परमेष्ठी हैं, जिन पंच परमेष्ठियों के स्वरूप के संदर्भ में हमने जो थोड़ी बहुत चर्चा की है, ये पंच परमेष्ठी क्यों हो गए महान, ये क्यों हो गए पूज्य, हम क्यों झुकने लगे उनके चरणों में, तीन लोक के जीव क्यों उन्हें मानते हैं, क्यों उन्हें पूजते हैं, इन पंच परमेष्ठियों को, असली कारण ये है कि कुछ भी नहीं होते हुए भी ये प्रसन्न है। असली कारण ये है कि इन्होंने सुखी होने के लिए घर बार परिग्रह का त्याग किया है। आनंदमय दशा है ये, स्वयं आनंदमय है और हमें आनंद का मार्ग बतलाते हैं, इसलिए हम इनकी वंदना पूजा करते हैं, ये असली कारण है। इनकी महानता का आधार है राग द्वेष का अभाव हो जाना, इच्छाओं से रहित होना, कषायों से मुक्त होना, कर्मों से पार होना, इनकी महानता के आधार है। ज्ञान की विशेषता इनमें होती है और वैराग्य इनके जीवन में देखा जाता है, और राग द्वेष से रहित पने की चर्चा करते हैं, इसलिए पंच परमेष्ठी पूज्य और महान हो गए हैं। ये पंच परमेष्ठियों का अत्यंत संक्षिप्त स्वरूप है और इन पंच परमेष्ठियों की महिमा जिनके हृदय में आती है, वही वास्तव में नमोकार मंत्र सम्यक रूप से बोलते हैं। हम नमोकार मंत्र तो बोले और हमें पता नहीं हो कि नमोकार मंत्र में किसको नमस्कार किया है, तो फिर हमारा नमोकार मंत्र बोलना ठीक नहीं है, उचित नहीं है, सार्थक नहीं है। उचित तो ठीक की तो क्या बात करें, सार्थक नहीं, क्योंकि हमें पता ही नहीं है हम नमो अरियंताणम बोल करके किसको नमस्कार कर रहे हैं। कहीं कहीं तो हमने ऐसी विचित्रताएं भी देखी है कि नमो अरियंताणम बोल रहे हैं और ग्रहित मिथ्यात्व जिनके माध्यम से पुष्ट होता है उनके सामने जाकर के हाथ जोड़ रहे हैं और उनके सामने हाथ जोड़ के अरियंताणम बोल रहे हैं। नमो अरियंताणम, हम जानते ही नहीं अरियंत कौन है, उनकी वितरागता कैसी होती है, उनकी वितरागता का क्या स्वरूप है, ये हम नहीं जानते। इसलिए अरियंतों का स्वरूप जाने, सिद्धों का स्वरूप जाने, आचार्य उपाध्याय साधुओं का स्वरूप जाने, पंच परमेष्ठियों का स्वरूप जाने, उनको पहचाने, और जब भी हम नमोकार महामंत्र बोले तो हमारे चिंतन में, हमारे विचारों में, हमारी सोच में, हमारे थिंकिंग प्रोसेस में वो सब गूंजने चाहिए, घूमने चाहिए, दिखाई देने चाहिए। अरहंतों की चर्चा करते ही अरहंत परमात्मा का चित्र बन जाना चाहिए, सिद्धों की चर्चा करते समय सिद्धों का चित्र बन जाना चाहिए, आचार्य उपाध्याय और साधुओं को नमस्कार करते समय आचार्य उपाध्याय साधुओं के चित्र बन जाने चाहिए हमारे दिमाग में। जिस तरह से किसी के भी चित्र बन जाते हैं, हमने कहा शाहरुख खान, आपके दिमाग में चित्र बन गया शाहरुख खान का, हमने कहा अमिताभ बच्चन, आपके दिमाग में चित्र बन गया अमिताभ बच्चन का, हमने कहा सचिन तेंदुलकर और आपके दिमाग में चित्र बन गया सचिन तेंदुलकर का, आकृति बन गई, तो हमने कहा आर्यन परमात्मा, अब खाली, अब पता नहीं अब कब कौन सा चित्र बनेगा आर्यन भगवान का। तो आपके दिमाग में अरियंतों का स्वरूप ख्याल में हो तो उनका चित्र बने, स्वरूप में चित्र कैसे बनेगा। इसलिए आचार्यों ने बल दिया है स्वरूप पहचानने पर। यस्मात् क्रिया प्रतिफलंती न भाव शून्य, कोई भी ऐसी क्रिया जिसमें हम नमस्कार कर रहे हैं, वंदना कर रहे हैं, पूजा शक्ति पाठ कर रहे हैं, कोई फल नहीं मिलेगा। कब तक नहीं मिलेगा? न भाव शून्य, भाव शून्य यदि है तो हमारे को कोई फल नहीं मिलेगा। भाव की प्रधानता है, भावों की प्रधानता है, भावों की मुख्यता है। भावना भवनाशिनी, भावना से भव का नाश होता है, भव भव का भाव होता है। इस तरह पंच परमेष्ठियों का स्वरूप जानना बहुत जरूरी है उन्हें नमस्कार करने के पहले। और ध्यान रखें ये चीज कि जब जब पंच नमस्कार मंत्र का स्मरण करें तब तब हमारे दिमाग में वो पंच परमेष्ठियों की आकृति आनी चाहिए, वो चेहरे दिमाग में बनने चाहिए, तभी हमारे द्वारा पंच परमेष्ठियों की पूजन करना, उन्हें नमस्कार करना, पंच नमस्कार मंत्र महामंत्र नमोकार मंत्र बोलना सार्थक हो सकेगा। ये बहुत थोड़ी चर्चा मैंने इस संदर्भ में की है और अपन ने जो थोड़ी बहुत बातें यहाँ की है, इस संदर्भ में यदि आप लोगों को कुछ पूछना हो तो आप लोग पूछ लीजिए।
बहुत बढ़िया पंडित जी, बहुत बहुत बढ़िया आपने सुनाया,
बहुत बढ़िया पंडित जी।
बहुत बढ़िया। तो नहीं, मैंने तो जनरल बातें बतलाई है और कुछ ऐसी प्रयोजन परक बात हुई नहीं। फिर भी यदि कोई इन पंच परमेष्टियों के संदर्भ में, इनके स्वरूप के संदर्भ में किसी तरह का कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं।
आज का सेशन बहुत अच्छा रहा पंडित जी।
हम नेक्स्ट सेशन, हाँ कोई क्वेश्चन हो तो।
को लगता नहीं है। हाँ
नहीं है, हाँ कोई बात
मतलब
नहीं।
आज का सेशन,
नेक्स्ट सेशन,
हाँ कोई बोल रहा था।
हाँ
अब मतलब आज का से मतलब ये ही बाल उत्पत्ति का कनेक्ट सेशन की बात कर रहे हैं कि हमारा जो हर रोज चलता है वो बात कर रहे हैं।
नहीं, मैं तो इसी की बात कर रहा हूँ, बाल बोध वाले की।
अच्छा, ओके ओके ओके।
इसमें कुछ पूछना है? नेक्स्ट
ये जो 16
सेशन जो है,
हाँ
हाँ 16 है।
ये जो 16 कारण भावना बातें वे तो कहीं लोग कहीं ज्यादा लोग भी तो भावना बातें होते हैं ना।
हाँ
हाँ तो ऐसे तीर्थंकर क्यों किसी को ही होता है किसी को नहीं होता है?
हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए ऐसा है, इस संदर्भ में नियम किधर से किधर लगेगा। 16 कारण भावना बने वाले हर व्यक्ति को तीर्थंकर प्रकृति का बंधन नहीं होता, लेकिन जिस व्यक्ति को तीर्थंकर प्रकृति का बंधन हुआ है उस जीव को 16 कारण भावनाएं हुई थी पहले,
निमित्त है।
है ना। जैसे मान लीजिए जितने तीर्थंकर होते हैं वे सब भगवान होते हैं या नहीं होते?
हाँ
जितने तीर्थंकर होते हैं,
हाँ
बोलिए, सब भगवान होते हैं ना?
हाँ
सब भगवान होते हैं। अच्छा जितने भगवान होते हैं वो सब तीर्थंकर होते हैं क्या?
नहीं
नहीं होते, बस सीधी सी बात है। सभी भगवान तीर्थंकर नहीं है, लेकिन सभी तीर्थंकर भगवान है। इसी तरह से सभी तीर्थंकर 16 करण भावनाओं को भाने वाले होते हैं, लेकिन 16 करण भावनाओं को भाने वाले सभी लोग तीर्थंकर नहीं होते।
सभी को ये भावना तो बहानी ही चाहिए ना।
भावना तो भानी चाहिए ना, तो अच्छी बातें हैं और क्या है उसमें। दृढ़ श्रद्धान की बात है, विनम्रता की बात है, सदाचारशीलमय रहने की बात है, संयम से रहने का उपदेश है, तपश्चरण करने की बात है, ज्ञानी धर्मात्माओं के प्रति वैयावृत्ति करने की बात है, अरिहंतों की भक्ति, आचार्यों की भक्ति, पंच परमेष्टियों की भक्ति, स्तुति की बात है, अपना उपयोग धर्म मार्ग में लगाने की बात है। सबको भाने ही हो कि अच्छे अच्छी बातें हैं। नेक्स्ट सेशन जो अपना इस संदर्भ में है, ये जो अपनी जो आज जो क्लास जो बालभूत संदर्भ में जो लगी है, इस संदर्भ में अपन अब बात करेंगे नेक्स्ट वीक। माने एक क्लास और अपनी होनी है अभी 28 को, तो उस दिन अपन इसके बारे में बात करेंगे, है ना। अभी मैं इसको पूरा करता हूँ। जनवाणी स्तुति बोल लेते हैं एक बार। या वाणी के ज्ञान से तुझे लो का लोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ लोक, सदा देत हूँ लोक। नौ वर्ण मुखर मंत्र। चंद्रमाई माता की जय।
जय
जय हो,
जय हो,
जय जिनेंद्र सभी को।
जय जिनेंद्र,
जय जिनेंद्र,
जय जिनेंद्र,
जय जिनेंद्र,
ठीक, जय जिनेंद्र करता हूँ।